तो आप भी थोड़ा आगे आ सकते हैं, पीछे जाने के लिए स्पेस स्थान छोड़िए। हरे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपां सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका इस साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत है। तो आप सब ने जो सिक्स सेशन है, सिक्स से सेवन सेशन, सिक्स ना, सिक्स सेशन कोर्स, हाँ, लाइफ चेंजिंग सेमिनार जिसको दूसरी भाषा में कहते हैं, वाचन किया था पिछले छह हफ्तों में अलग अलग संडेज में। तो आज से ये जो साप्ताहिक कार्यक्रम है उसकी वास्तव में शुरुआत है। तो जैसे कि शास्त्र कहते हैं, संसार विष वृक्षस्य द्विफले ही अमृतोपमे। तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि ये जो जगत है ये विष वृक्ष का एक सागर है, या विष चेंज नहीं करो कुछ। हरे कृष्णा, ठीक है। तो ये जो जगत है जिसकी तुलना शास्त्र में की गई है कि ये एक विषैला वृक्ष है, ये संसार क्या है, विषैला वृक्ष है। तो कोई विषैला वृक्ष है तो उससे कैसे सोचा जा सकता है कि उसके फल अमृत के समान हो सकते हैं, असंभव है। यदि विषैला वृक्ष है तो विषमय फल ही वो देगा। तो लेकिन शास्त्रों में इस बात की गवेषणा की गई है, कहा गया है संसार विष वृक्षस्य द्वे फले ही अमृतोपमे, दो फल अमृत के समान है। और वो दो फल क्या है, कदाचित केशवे भक्ति तद्भक्ता समागमः। अभी हम इस भौतिक जगत में जब जन्म लेते हैं तो हमारा जो जन्म है वो अज्ञान के अंधकार में होता है। हम माँ के गर्भ में जब होते हैं तो वो अंधकार में होते हैं। माँ का जो गर्भ है, पेट है, जिसमें 9 महीने के लिए हर एक जीव उसके अंदर बंधा होता है, और ऐसे कठिन स्थिति में अंधकार कोठड़ी में कमरे में वो रहता है, और वह रहकर प्रार्थना करते रहता है। क्या प्रार्थना करता है कि आरना सहे, हे भगवान मुझे एक छोटे से घर के अंदर, छोटे से जो स्थान है माँ का, जो इतना छोटा सा पेट है उसके अंदर जो कष्ट प्राप्त हो रहे वो सहने जा रहे हैं। अभी हम तो विश्वास नहीं करेंगे कि हम भी माँ के गर्भ के अंदर थे। विश्वास होता है किसी का? नहीं। ऐसे बहुत ही अज्ञानी लोग हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करते। वो सोचते हैं कि इस जन्म के बाद कोई जन्म नहीं है। आप विश्वास करो या ना करो, आपको कष्ट भुगतना पड़ेगा। आज कोई बच्चा है छोटा, और वो बच्चा यदि सोचता रहेगा कि उसको, वो यदि अज्ञानी है उसको पता नहीं आग जलाती है, वो हाथ डालेगा तो आग थोड़ी बोलेगी कि आप बच्चे हो आपको मेरा गुण धर्म पता नहीं था तो इसलिए मैं आपको माफ करती हूँ, ऐसे होगा? नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार से हम विश्वास करें ना करें, लेकिन ये भौतिक संसार हमें कष्ट देता है। तो माँ के गर्भ में इतना अधिक कष्ट प्राप्त करते हैं क्योंकि जब बच्चा बहुत छोटा होता है, बालक नया नया जन्म लेता है पेट के अंदर जब होता है, तो उसकी ऊपर की जो चमड़ी है, स्किन है, बहुत पतली होती है। माँ जो खा रही है तीखा, जलन करने वाला, वो सब उसको चुभता है कांटों की तरह, और वो बेचारा रोता रहता है, चिल्लाता रहता है। जी वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे कृष्णा, ऐसी कष्टमय स्थिति से मुझे बाहर निकालो और प्रकाश दिखाओ मेरे जीवन में। हम क्या देखना चाहते हैं? लाइफ, प्रकाश, लाइट देखना चाहते हैं। हाँ, वहां तो कोई बल्ब तो है नहीं, बल्ब नहीं लगा सकते अभी वहां, और जनरेटर से कोई प्रकाश नहीं पहुंचेगा, अंधकार जीवन है। तो वहां भगवान का हम प्रणाम की मुद्रा में होते हैं, ऐसे बैठा रहता है बच्चा, जैसे आप भगवान को प्रार्थना करते हैं ना हाथ जोड़ के, वैसे। तो ये सब चीजें हैं भागवतम में दी गई है, ऐसे नहीं कि हम कुछ मनगढ़ंत बातें बोल रहे हैं। ये सब जो विस्तार का वर्णन है वो कहां मिलता है? भागवतम में मिलता है। तो शास्त्र हमारे जीवन की जो वास्तविकता है, सत्यता है, वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो वो बच्चा जो बालक है प्रार्थना करता है हाथ जोड़ते हुए, ऐसे पांव जुड़े हुए हैं, पूरा बॉडी जुड़ा हुआ है। हम भगवान के मंदिर जाते तो अकड़े होते हैं, सीना तान के खड़े रहते हैं, हमें कहा जाए जरा झुको भगवान के सामने प्रणाम करो, हम सोचते कपड़े खराब हो जाएंगे, हाँ सर गंदा हो जाएगा। लेकिन वहां कष्टमय स्थिति में हम अपने आप ऐसे प्रार्थना की मुद्रा में है और भगवान के साथ भगवान को स्मरण कर रहे हैं, अंधेरे में चिल्ला रहे, रो रहे हैं, और कोई सुनने वाला नहीं है। माँ को थोड़ी सुनाई देता है, सुनाई देता है क्या? नहीं सुनाई देता, किसी को आवाज नहीं सुनाई देती। सुनने वाले केवल भगवान है। कौन है? इसलिए भगवान कहते हैं मेरी आंखें शायद दसों दिशाओं में है, मेरे कान दसों दिशाओं की आवाज सुनते हैं, मेरी आंखें दसों दिशाओं को देखती हैं। इसलिए भगवान कहते अहम आत्मा बुढ़ा केशव, कि मैं जो परम भगवान हूं हर एक के हृदय में निवास करता हूं, भूत वर्तमान और भविष्य को जानता हूं। तो ऐसे जो भगवान है वो सुनते हैं और भगवान को जीव प्रार्थना करता है कि हे कृष्णा मुझे इस विपदामय कष्टमय स्थिति से बाहर निकालो और माँ के गर्भ से बाहर आकर मैं ना आपका भजन करूंगा। क्या करूंगा? आपकी भक्ति करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आपके नामों का जप करूंगा, आपकी कथा को सुनूंगा, आपके धाम में यात्रा करूंगा, आपकी परिक्रमाएं करूंगा, आपके लिए माला बनाऊंगा, आपके लिए भोग बनाऊंगा। सब प्रकार का जो भी उसको स्मरण हो रहा है सब प्रकार से कहते हैं भगवान आप निकालो, ऐसे कहते ना बातें नहीं। हाँ हरी बोल। एक तो आपके फोन साइलेंट कर दीजिए अभी यदि ऑन है, दूसरा है कि जब आप सुनते हैं तो बिल्कुल बातें नहीं। एक दो छोटे से रूल है, नियम है, क्षमा चाहता हूं आपसे। तो जब शास्त्र कहते हैं कि जब इस प्रकार से जीव माँ के गर्भ में प्रार्थना करता है, और भगवान को कहता है एक बार मुझे बाहर निकालो, मैं आपके भजन करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। लेकिन वो बाहर आता है, बाहर तो इंतजार करते रहते वेलकम करने के लिए उसको। एयरपोर्ट में आप जाते हो ना, कोई एयरपोर्ट से कोई आपका गेस्ट आ रहा है तो वेलकम करने के लिए उसके नाम लिखे रहते, और बाहर के लोग तो इतने आनंदित होते हैं, और एक मेंबर हमारा बढ़ रहा है और एक जीव आ रहा है। लेकिन बेचारा आता कैसे, रोते रोते आता है, चिल्लाते हुए आता है। तो जब यदि कोई बच्चा जन्म ले और वो रोए नहीं तो डॉक्टर कहते कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें, इसलिए डॉक्टर चिकोटी निकालते हैं, रुलाते हैं। और फिर कहने का तात्पर्य क्या है, अभी वो बाहर आते आते रो रहा है, बाकी सारी जनता जनार्दन हंस रहे हैं, हाँ कितना आनंद हो गया, ये अकेला रो रहा है और सारे हंसे पड़े हैं। और फिर जब बड़ा होते जाता है, रोना शुरू हो गया लाइफ का, अभी बच्चा है, ये मांगेगा वो मांगेगा, अभी उसको भूख लग रही है तो मांगो लगता है कि कोई मच्छर काट रहे हैं, और उसको मच्छर काट रहे होंगे, रो रहा होगा, उसको लगेगा भूख लग रही है, जबरदस्ती मुंह में ठुसाया जा रहा है उसको, वो रोते रहता है, परेशान रहता है, स्कूल नहीं जाना चाहता, बड़ा होता है धन प्राप्ति के लिए भागता है, वह बॉस की मार खाते खाते रोता है, टीचर के कारण रोता है। तो ऐसा रोना बंद नहीं होता, ये जो साउंड स्पीकर जब ऑन हो जाता है ना उसका माँ के गर्भ से बाहर आते हुए, बंद कब होता है, मृत्यु के समय। ये साउंड लाउड स्पीकर जब ऑन होता है तो ये ऑन रहता है, और जब अंतिम सांस वो लेता है तब उसकी आवाज जो है बंद हो जाती है, रोता है, और तब वो रोते रोते ही मरता है और बाकी दूसरों को भी रुलाता है। तो जब जिस जगत में जीव जन्म लेता है तो इस जगत के कुछ गुण धर्म है, जैसे आप शराबी के साथ जाओगे तो आप ना चाहते हुए भी आप शराब पीना शुरू करोगे, नहीं बुरी आदतें, जिनके अंदर बुरी आदतें हैं उनका संग्रह करोगे तो वैसा ही बन जाओगे। तो इस जगत का स्वभाव क्या है, भुला देना, इस जगत का स्वभाव क्या है, भुला देना। माँ के गर्भ के अंदर कष्टमय स्थिति में होता है जीव, कहते हैं मुझे बाहर निकालो, आपकी भक्ति करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। इस भौतिक जगत की हवा ऐसे है, माँ के गर्भ से बाहर आते ही यहाँ की हवा उसको ऐसी लगती है कि वो सारा जो बोला था भगवान को, जो जो प्रॉमिस किया था वो भूल जाता है। हम ऑलरेडी पहले से भगवान को प्रॉमिस करके आए हैं, तो यहाँ आकर और प्रॉमिस प्रॉमिस सारी जनता को प्रॉमिस करते रहते हैं। नहीं अभी इलेक्शन थे, नेता लोग क्या करते हैं, प्रॉमिस ही करते हैं। हमने जो पहला प्रॉमिस किया है वो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो जितने आप प्रॉमिस कर रहे हो कैसे पूरा कर सकते हो। तो उस प्रकार से जीव जन्म लेते ही रोता है, पूरे जीवन भर रोता रहता है। किस चीज के लिए रोता है, अरे सुखी होना था, सुख 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 करके सूखा सूख जाता है ना, जैसे कोई भोजन नहीं मिल रहा है तो सूख जाता है व्यक्ति, लकड़ी सूख जाती है, पेड़ सूख जाता है, पानी नहीं मिलता। तो लोग क्या है संसार में, सुख 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 करके बेचारे सूखे जा रहे हैं। तो इसलिए शास्त्र हमें कहते हैं कि इस जगत के बारे में और अपने जीवन का जो प्रमुख कर्तव्य है उसके बारे में जानना चाहिए, और उसी के लिए महत्वपूर्ण बुद्धिमान मनुष्य जीवन मिला है। भगवान ने कई सारे योनियां, कई सारे जो शरीर पैदा किए, अलग अलग पशु का, कुत्ते का, बिल्ली का, कॉकरोच का, सुअर का, गाय का, भैंसे का, बकरे का, सबका भगवान संतुष्ट नहीं थे, अरे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान ने जब मनुष्य का शरीर बनाया ना तो भगवान बहुत खुश हो गए कि हाँ ये बॉडी सही है, ये शरीर वास्तव में अच्छा है, ये शरीर मुझे समझ सकता है, मुझे जान सकता है, मेरी सेवा कर सकता है, मेरे बारे में चर्चा कर सकता है और मेरे पास मेरे धाम में वापस आ सकता है। भगवान इस प्रकार से ही मनुष्य शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए करते हैं, इसलिए कि उनके पास वापस जाने के लिए। लेकिन हम इतने निठल्ले हैं, हम सोचते कि ये संसार ही मुझे सुख देने वाला है, हम तो उस गधे के भांति हैं। हाँ प्रभुपाद जो फाउंडर आचार्य है वो अमेरिका में एक युवक उनसे मिला, बहुत धनवान था, जिसका नाम था बॉब कोहेन, उसने बहुत सारे प्रश्न पूछे। तो एक प्रश्न पूछा कि संसार में सुखी कैसे होया जा सकता है। तो प्रभुपाद ने कहा, इस जगत में रह के सुख की आशा करना असंभव है, क्योंकि सुख हमारे जीवन में हम पूरा जीवन बिताते हैं लेकिन सुख नाम की वस्तु को पकड़ नहीं पाते, है ना, पकड़ पाते नहीं, पकड़ पाते। जैसे वो कहते हैं, शंकराचार्य ने एक श्लोक बोला, मोह मुद्गर स्तोत्र। एक स्तोत्र में उन्होंने कहा मोह इल्यूजन को दूर करने वाला स्तोत्र है, उसमें वो कहते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंगम गलितम पलितम मुंडम, कि ये जो सुख प्राप्ति की आशा कब तक व्यक्ति के हृदय में बनी रहती है। वो कहते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम। अंगम गलितम का मतलब है कि पूरा जीवन अपना व्यक्ति लगाता है सुख के लिए, सुख की खोज के लिए। वो बूढ़ा हो जाता है, उसकी बाल्यावस्था चली जाती है, युवा अवस्था चली जाती है, वृद्धावस्था आती है और उसका शरीर गलने लगता है। क्या होने लगता है? गलने लगता है। बुढ़ापा का है क्या है, पहले हमारा शरीर बहुत सुंदर होता है, जैसे जैसे हम बुढ़ापे की ओर जाते हैं तो ये चमड़ी बिल्कुल ऐसे खींचोगे तो वैसी बनी रहती है। उसको कहते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम, मतलब ये शरीर के सारे अंग गलने लगते हैं। पलितम मुंडम, पलितम मुंडम मतलब जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो हम बाल सारे गलने लगते हैं। किसी को कहा जाए भगवान के लिए अपने बाल उतारो छोटी रखो, कहता नहीं हो सकता, पागल हो गया क्या, फिर नहीं करोगे तो जो प्रकृति है, आप लोग आगे आगे आ जा सकते बिल्कुल, तो जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो क्या करेगी, आपके बालों का अपने आप सफाया करेगी, है ना। तो अंगम गलितम फलितम मुंडम दशना विहीनम जातम तुंडम। फिर अभी ये दो चीजें तो हुई, तीसरी चीज क्या कि जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो जो सारे दांत है वो खत्म होते, एक एक निकलने लगता है, टूटने लगता है, गिरने लगता है, दशना विहीनम। हाँ, इतने सारे सुंदर दंतों की जो पंक्तियां हैं, शुभ्र दांत सारे निकल जाते हैं, गिर जाते हैं। हाँ, दशना विहीनम जातम तुंडम। और वृद्धा यावत ग्रहित्वा दंडम, जो वृद्धावस्था आती है तो व्यक्ति को डंडे का सहारा लेना पड़ता है, इतना सब हो रहा है शरीर के साथ, क्या हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अभी हम जब जवान होते हैं तो सोचते हैं मैं कभी बूढ़ा ही नहीं होने वाला हूं, किसी को लगता है बूढ़ा हो गया, नहीं, हमें लगता है बुढ़ापा दूसरे के लिए बना गया है, मैं अपने जीवन में बूढ़ा नहीं होऊंगा क्योंकि मैं रोज ये साबुन से नहाता हूं, वो क्रीम लगाता हूं, वो शैम्पू यूज करता हूं, वो तेल यूज कर रहा हूं, अच्छे अच्छे ब्रांड के कपड़े पहन रहा हूं, एसी में रह रहा हूं, एसी की गाड़ी में जा रहा हूं, हाँ मैं बूढ़ा कभी होने वाला नहीं हूं। हाँ, ये आपका भ्रम है, अज्ञानता है। तो शास्त्र कहते इतना सब शरीर के साथ हो रहा है लेकिन तथापि न मुंचति आशा पिंडम, इतना सब हो रहा है फिर भी व्यक्ति के हृदय में एक चीज की जो आशा लगी है ना कि मैं आओ सुखी होऊंगा, अभी भी सुखी, मुझे सुख मिलने वाला है। इतना सब हो रहा है फिर भी व्यक्ति मूर्खता की भांति सोचता है कि मैं सुखी होऊंगा, इम्पॉसिबल है। ये वैसे ही है, हाँ, जैसे एक व्यक्ति बहुत बूढ़ा हो गया लेकिन उसके ना चार बच्चे थे। कितने बच्चे थे? आप ध्यान से सुनिए, मैं सारे प्रश्न पूछने वाला हूं आपको बाद में, आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर आप उचित नहीं है, आपको ध्यान से सुनना होगा। इस क्लास के बाद प्रश्नों क्वेश्चन आंसर होंगे, मैं प्रश्न पूछूंगा आपको उत्तर देने हैं। तो वो एक व्यक्ति जिसके चार पुत्र थे और बहुत सारे बिजनेस थे, दुकान थे, किराना वगैरह, जैसे हम अभी परसों किसी एक जगह गए गोल मार्केट में, एक व्यक्ति की शॉप में बात कर रहे थे, हमने कहा अरे अरे बाबा थोड़ा भगवत गीता का जयंती चल रहा है, गीता ले लो। वो इतना व्यस्त है, इतना व्यस्त कि गर्दन उसके ऊपर नहीं हो रही थी। गिराई का रहे थे, सामान दे रहा था, ले रहा था, लिख रहा था, वो साधु उनकी तरफ देखने के लिए उसको टाइम नहीं था। हम तो इतना पागल हो गया था। तो फिर वैसे ही ये जो चार पुत्र थे उनके पिता की स्थिति थी। उन्होंने कहा एक दिन एक साधु उनके घर आते हैं, कहते साधु महाशय आपका जीवन तो आप घूमते रहते हो, जैसे पानी बहता है वैसे साधु का जीवन क्या है, भ्रमण करना, कृष्ण का गुण गाते हुए, हरे कृष्णा बोलिए, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तों का जीवन क्या है, नारद मुनि बाजाए बिना राधिका रमन नामे। नारद मुनि का जीवन है राधा कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हुए भ्रमण करना। वो साधु उस घर में आए, वो साधु को कहा कि आप भ्रमण करते जरा हमारे पिताजी को भी ले जाइए ना, जरा तीर्थ यात्रा में ले जाइए, उनका मन ना इसमें लगा हुआ है। क्योंकि आपका मन जिस चीज में लगाओगे अगला जीवन आपको वही बनना पड़ेगा जिसमें आपका मन लग रहा है। हम हरिद्वार गए थे भक्तों के साथ, एक जगह कहा ऐसे घूम रहे थे, गाड़ी से ट्रैवलिंग कर रहे थे, कुछ हम साहब ब्रह्मचारी थे, तो वहां कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा आप आइए प्रसाद ग्रहण कीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए हमारे यहाँ। तो हमने कहा क्या, तो उन्होंने बुलाया तो सब बैठ गए। तो वहां कुछ चीजें ना पत्तल रख दिए, पानी रख दिए, फिर प्रसाद सर्व करने लगे, राई दाल सब्जी चपाती स्वीट्स वगैरह, और उसके साथ साथ एक बोतल भी साइड में रखने लगे। कौन सी बोतल, किनले की नहीं, बिस्लेरी की नहीं, एक्वाफिना की नहीं, कौन सी, कोको कोला ब्लैक ड्रिंक, कौन सी, हाँ कोको कोला का रखा। अरे हमने कहा हम तो कोको कोला नहीं पीते। हमने कहा पहले प्रश्न पूछा कि कोको कोला क्यों आप बांट रहे हो, जो भी आ रहा है उसको कोको कोला देते जा रहे हो। तो वहां जो व्यक्ति था उन्होंने कहा हमारे जो पिताजी है ना उनका देहांत हुआ था और उनकी आखिरी इच्छा यही थी। हमने पूछा क्या आखिरी इच्छा थी, कहते जब बापूजी अपने शरीर को छोड़ने वाले थे तो छोड़ते समय वो कह रहे थे, वो भोला के भक्त थे, शिव जी की पूजा करते थे, तो जब मरने वाले थे तो हमने कहा बापू बोलो भोला, तो बापू रोज काउंटर में बैठ के कोको कोला पीते थे, उनको मृत्यु के समय भोला का स्मरण कहाँ होगा, किसका स्मरण हो गया, कोको कोला तो गया। तो इसलिए कहते कि उनके आखिरी मुंह से आखिरी जो शब्द निकला वो क्या है, कोको कोला, इसलिए हम कोको कोला दे रहे हैं। और वास्तव में ये जो जीव है वो भगवान का नाम लेने के लिए बनी है। यदि हम इस जीवा का उपयोग मेंढक की तरह तर तर करते रहेंगे तो सांप आएगा, सांप कौन है, मृत्यु काल रूप में है। तो हमें मेंढक नहीं बनना है अपने जीवन में। ज्यादातर लोग जी रहे हैं मेंढक का जीवन, मेंढक का जीवन है टरटर करना और सांप को आमंत्रण देना कि मिस्टर स्नेक हो सांप आओ और मुझे खा लो। और दूसरा क्या है, मेंढक हमेशा सोचता है अपने कुएं में रहेगा, वो सोचता है इससे परे कोई जगत ही नहीं है, सब कुछ यही है। वैसे व्यक्ति अपने छोटे से घर में रहता है ना, उसको लगता है इससे परे कोई दुनिया ही नहीं है, इससे परे कोई जीवन ही नहीं है, इससे परे कोई आनंद ही नहीं है। वो मेंढक की तरह रहता है अपने कुटिया में छोटे से घर में और वो सोचता है इससे परे कुछ है ही नहीं। तो हमें मेंढक के बाते ही अपने वृत्ति को नहीं रखना है। ये जो जीव है वो कृष्ण का नाम लेने के लिए बनी हुई है। तो फिर क्योंकि जब मृत्यु हो जाता है तो जब आप किसी के शरीर को ले जाते हो ना, सब लोग क्या बोलते रहते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन जिसको ले जा रहे हैं ना उसकी गर्दन हिलती रहती है, कहता है नहीं नहीं मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। देखो आप ले जाते हो तो बेचारी की गर्दन हिलती है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सीरियस है ना, ये क्या चीज है, बहुत गंभीर चीज है। तो इसलिए वो जो चार पुत्र थे उन्होंने कहा साधु जी आप हमारे पिता को ले जाओ, जरा यात्रा करने ले जाओ, क्योंकि इनका मन ना जो दुकान है ना उसके गले में अटका है, जो मनी काउंटर है उसमें अटका हुआ है, इनको ले जाए जरा भगवान की मन लगेगा। हाँ पूरा जीवन बिता दिया, तो उन्होंने कहा ठीक है ले जाता हूँ। अभी साधु को क्या प्रॉब्लम है, वो तो चाहता है सारा जगत भगवान का नाम ले, सारा जगत आनंदित हो जाए, नहीं, क्योंकि सबने ट्राई किया इस जगत में सुखी और आनंद की प्राप्ति करने के लिए, कोई सुखी नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो चलो, अभी ले गए, कभी यहाँ जा रहे, कभी वृंदावन जा रहे, सब गए, सब जगह ले गए। देखा इसका हृदय परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, भगवान का नाम ही इसके मुंह से नहीं निकल रहा है। जैसे किसी की मुंह बहुत जीप बड़ी मोटी होती है ना, जैसे बच्चे जन्म लेते हैं। हाँ मुझे बताए, मैं किसी से मिल रहा था तो उनका जो बच्चा था उसकी जीवा, मैंने कहा क्यों नहीं बोलता, कहते इसका जीप ना जो मोटा है, अभी नहीं बोलेगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना तब बोलेगा। तो वैसे ही है, भगवान का नाम जीवा से नहीं आएगा, सारी दुनिया की चीजें वो मुंह में आएगी। तो साधु परेशान हो गए कि ये पूरा भ्रमण करवाया सारे तीर्थ, फिर भी भक्ति इससे हो नहीं रहा, भगवान की सेवा करने की भावना ही नहीं आ रहा है, इसका जो मन है हृदय कहाँ अटका हुआ है, घर में अटका हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, वापस ले जाता हूँ, कहा ले लो आपके पिताजी को ले लो, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तो भगवान का भजन इनसे हो नहीं रहा है, भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं 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 साधु जी, आप प्लीज और एक बार ट्राई करो, और ट्राई करने में क्या कष्ट है। तो फिर वो ले जाते हैं जैसे अभी लास्ट, तो साधु जी उनको ले गए घूमते घूमते इलाहाबाद गए, त्रिवेणी संगम देखा, गंगा यमुना सरस्वती में स्नान किया, फिर वहां से बनारस गए, बनारस में जो घाट है उस घाट में गए जहां मृत देह को जलाया जाता है। तो जब वो घाट में जा रहे थे, देखा साधु तो अपनी माला लेकर क्या कर रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब बिल्कुल आ गया जय, सारे सट जाए बिल्कुल आ गया जय। तो फिर वो साधु महाशय ने वो बनारस ले गए, बनारस के घाट में गंगा के किनारे गए, जैसे घाट में वो चल रहे थे उसी समय उन्होंने देखा, हाँ क्या देखा, कि अरे मेरे साथ जो व्यक्ति है वो रोते जा रहा है। हाँ उसने कहा, साधु को लगा मेरा जीवन धन्य हो गया, एक व्यक्ति भगवान का भक्त बन गया, एक व्यक्ति भगवान के लिए रोना सीखा है। संसार में हम बाकी चीजों के लिए रोते हैं, जीवन भर रोते रहते हैं, लेकिन भगवान के लिए नहीं रोते, क्योंकि हमें लगता है कि मेरे जीवन में भगवान की क्या आवश्यकता है, मेरे जीवन में भगवान को छोड़कर सारी चीजों की आवश्यकता है। तो हम दुर्योधन के समान है, किसके समान है, किसके समान बनना है हमें, अर्जुन के समान। तो जैसे वो साधु ने देखा कि अरे ये रो रहा है गंगा के किनारे, तो उन्होंने पूछा बापूजी, हाँ बोली बोली बताइए जरा आप रो क्यों रहे हैं। उसने कहा इसलिए रो रहा हूं कि ना मैं देख रहा हूं कि मैंने जीवन अपना बर्बाद किया। साधु को लगा कितनी बुद्धिमता की बातें कर रहा है, ज्ञान उदित हो गया अभी इसके हृदय में। तो उन्होंने कहा कि आप, उन्होंने कहा मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं यहां सारे लकड़ ही लकड़ है, यदि लकड़ का बिजनेस को इतना डिमांड है तो मैंने पूरा जीवन कपड़े का धंधा किया था। हाँ साधु को लगा कि अभी भी नहीं सुधर सके, उसने देखा ना चिताएं जल रही है, लकड़ का बिजनेस बड़ा जोर शोर से हो रहा है। तो वैसी स्थिति हमारी है, मतलब हम शरीर बहुत नजदीक आ रहा है शरीर त्यागने का समय, फिर भी सोचते हैं ये जगत में सुख मैं प्राप्त करूंगा। हम सबकी स्थिति तो वैसे ही है मेंढक की जैसी, जैसे एक सांप था, जाते जाते उसने मेंढक को देखा और पकड़ लिया, जैसे पकड़ा तो आधा मेंढक मुंह में चला गया, आधा मेंढक बाहर था सांप के, फिर भी मेंढक अपनी जीभ बाहर निकाल रहा है और प्रयास कर रहा है और कुछ खाने के लिए पीने के लिए, अभी भी भोग करने की भावना उसकी दूर नहीं हो रही थी, अभी भी सुख छुपा हुआ है। हम सब की स्थिति वैसी ही है, हम सब सांप के मुंह में ऑलरेडी है, कोई 40 साल से सांप के मुंह में चला गया है, 40 साल आयु जिनकी है वो ऑलरेडी अंदर है, 20 साल है वो भी सांप के मुंह में है, 60 साल के और ज्यादा मुंह में है, हम सब लोग सांप के मुंह में है, मतलब काल के मुंह में है, मृत्यु के नजदीक है, फिर भी हम सोचते हैं कि इस जगत में मेरे लिए सुख है। इसलिए भगवान कहते हैं माम व्यत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाम्नुवन्ति महात्मना संसिद्धि परमांगता। भगवान कहते कि ये जगत दो इसके गुण है, एक है दुख आलय और दूसरा है अशाश्वतम, मतलब ये सुख असंभव है और ये परमानेंट नहीं है। सारा जगत सोचते हैं परमानेंट नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं सोचते रहते हैं अभी के जीवन सफल परमानेंट नौकरी मिली, उनको पता नहीं लाइफ परमानेंट नहीं है तो नौकरी क्या परमानेंट हो सकती है। तो वैसे ही वो जो जीव है हर जीव यही सोचते रहता है कि अभी मैं सुखी हो जाऊंगा। तो वो जो बॉब कोहेन था अमेरिका, उसने पूछा प्रभुपाद को, तो उन्होंने उदाहरण दिया कि जगत के व्यक्ति की स्थिति तो वैसे ही है जैसे गधा था और एक धोबी था। धोबी अपने गधे से बहुत सारा काम करवाता था, बहुत सारा बोझा ढो देता था गधे के ऊपर और गधा ले जाता था, कभी कभी गधा लेने जाता था। तो ये धोबी बड़ा चतुर था, धोबी ने गधे के ऊपर एक लकड़ की छड़ी टुकड़ा एक टांगा लंबा ऐसे टांगा जैसे ऐसे टांग दिया और सामने यहां हरी घास गाजर लटका दी। अभी गधे की बुद्धि तो गधे के समान ही है, अभी गधा जैसे आगे आगे चलेगा इस संसार में किसी को बोलना है तो कहते तुम गधा हो क्या, अभी गधा को क्या बोलेंगे आप कह सकते तुम मनुष्य हो क्या। तो फिर वो गधा जैसे वो सोचते अरे कितना अच्छा घास है, कितनी अच्छी गाजर है, थोड़ा आगे आगे जाऊंगा ना तो मुझे खाने को मिलेगी, क्या होगा थोड़ा आगे जाऊंगा तो मुझे खाने को मिलेगी, लेकिन उसको मिलती है वो घास और गाजर नहीं, वो चलता है, वो घास भी चलती है गाजर भी चलती है आगे, क्योंकि बेचारे के ऊपर बंधी हुई है लटक रही है। हम सबकी स्थिति वही है, जीव भी उसी प्रकार से सोच स्वप्न देखते रहता है। जरा ना आजकल कुछ दशा ठीक नहीं है, थोड़े 6 महीने जाएंगे ना तो सुखी हो जाऊंगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो सुखी सुख जीवन में। बड़े बच्चे हजारों लोगों के हुए हैं, उनके देखो सुखी है क्या नहीं है, बच्चे बेचारे छोड़ के अमेरिका जाते हैं, माता पिता घर में सड़ते रहते हैं और हम सोचते हैं सुखी हो जाएंगे, वैसे ही है हम। और ये सोच आशा करते करते हम इस जीवन को खो बैठते हैं। इसलिए सबसे आवश्यक है कि जिस भी व्यक्ति के पास ये बहुमूल्य मनुष्य का जीवन है उसको जानना कितनी इसकी वैल्यू है, कितना ये मूल्यवान है। इसलिए शास्त्र ये वर्णन करते हैं कि इस भौतिक जगत में हम एक कुएं में गिरे हुए हैं, हम कुएं में गिरे हैं तो कुएं में कोई व्यक्ति गिरता है तो बाहर निकलना बड़ा कठिन है, लेकिन एक ऐसा कुआं है जिसमें एक दरवाजा है छोटा, क्या है दरवाजा। तो ये जो जीव है या जो आत्मा है, हरे कृष्ण पहले दीजिए मत जो चलाए डिस्टर्ब होता है ना, फिर थोड़ा ही समय रहेंगे, सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है देखने से। तो जो जीव है इस जगत में गिरता है तो अलग अलग शरीरों में चलजा नवलक्षानी स्थावरा लक्ष लक्षति 84 लाख शरीरों में वो गिर गया है, ये उसके लिए कुआं है और यहां से बाहर निकलने के लिए एक ही दरवाजा है, वो दरवाजा क्या है मनुष्य का शरीर है। यदि वो अंधकार कुएं में कुआं जो है राउंड होता है तो आप ऐसे टिक नहीं रहा है, अंधेरा है, हाथ लगाते 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 जाते हो और जब दरवाजा आता है तो आपको खुजली आ जाती है, आप इधर हाथ रखने की वजह आप खुजलाते रहते हो आगे चले जाते हो, फिर दरवाजा आपने लांग दिया फिर से आप लंबा चक्कर काटोगे। वैसे ही आत्मा के लिए अलग अलग शरीर, इसलिए भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। हम सब महात्मा बन सकते हैं, महात्मा बनना बड़ा सरल है। भगवान कहते हैं महात्मा कौन है, महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति माश्रिता। महात्मा कोई टाइटल नहीं है, महात्मा कोई पोजीशन नहीं है, महात्मा कोई उपाधि नहीं है, महात्मा बनना बड़ा कठिन नहीं है, हम सब महात्मा बन सकते हैं। स्त्री हो पुरुष हो गरीब हो धनवान हो उसके लिए एक ही चीज की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं कि मेरी शरण ग्रहण करना। यदि कोई व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण करता है तो वह व्यक्ति महात्मा है। इसलिए कहते बहुनाम जन्म नामंते, ये बहुत दुर्लभ है। बहुनाम जन्म नामंते, हजारों हजारों जन्मों के बाद वासुदेव स महात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव सर्वमिति, कि भगवान कृष्ण परम है। उनकी सेवा में लगना, उनके नामों का उच्चारण करना, ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए बहुत दुर्लभ है, कृष्ण गीता में कहते हैं। तो हमें किसी के वाणी में विश्वास करना है तो भगवान की वाणी। हाँ, हजारों लोग हजारों बातें कहते हैं, लेकिन हमें पूछना चाहिए कि भगवान क्या कहते हैं। भगवान की वाणी क्या है? शाश्वत है, अपौरुषेय है। तो इसलिए है ये मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान है और उसको हमें अपने हाथ से खोना नहीं चाहिए। यदि आप अपना समय गवाओगे तो जैसे चाणक्य पंडित ने कहा कि आपके पास करोड़ों करोड़ों रुपए हो सकते हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, लेकिन आपके पास वो सामर्थ्य या शक्ति नहीं है कि आपके जीवन का बीता हुआ एक घंटा, एक क्षण, एक मिनट, एक महीना, एक साल आप वापस नहीं ला सकते। आपके जीवन से एक घंटा चला गया और आप हजारों रुपए भी दोगे तो वो घंटा आप अपने जीवन में वापस नहीं ला सकते। और आप नजदीक जा रहे हो, हम मृत्यु के नजदीक जा रहे हो। इसलिए शास्त्र हमें सावधान करते हैं, वंदो मुहि सावधान मते। शास्त्र कहते हैं कि हमें सावधान होना चाहिए अपने इस मनुष्य दुर्लभ मनुष्य जीवन के बारे में। इसका इस्तेमाल एक पशु के भांति नहीं करना चाहिए हमें। हम क्या है, मनुष्य जीवन मिला भी है लेकिन जी रहे हैं कुत्ते बिल्ली के जीवन के समान। वो शास्त्र नहीं पढ़ सकते, वो मंदिर नहीं जान सकते, वो उन्नत प्रश्न नहीं पूछ सकते कि मैं इस संसार में दुखी क्यों हूं, बुढ़ापा नहीं चाहिए, मृत्यु नहीं चाहिए, मैं हमेशा सुखी रहना चाहता हूं, ये सब पशु नहीं सोच सकते। ये तो हमारे पास उन्नत बुद्धि है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं। हाँ, तो इसलिए ये जो जीवन मिला है ये बहुत मूल्यवान है, जिसके लिए हमें सचेत होना चाहिए। इसका इस्तेमाल बाकी पशु के जीवन जैसे नहीं करना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति था और उसने क्या किया, उसने सोचा कि वो एक लाइब्रेरी में चला गया और लाइब्रेरी में जाने के बाद उसको बुक पढ़ने थे। तो एक लाइब्रेरी के नजदीक गया तो लाइब्रेरी को आग लग गई और सारी लाइब्रेरी चल गई, कुछ नहीं बचा था, एक किताब बची थी। हाँ, उसका नाम था सीक्रेट ऑफ लाइफ, लाइफ का सीक्रेट, रहस्य क्या है जीवन का, कैसे उसे प्राप्त कर सकते हैं। अभी जो लाइब्रेरी वाला व्यक्ति है उसके पास एक ही वो थी बुक। उसने कहा भाई सारी तो जल गई, इसको बेच देता हूं, थोड़ा सा पैसा आएगा, उस व्यक्ति को दे दी। और उस व्यक्ति को कहा ले लो, इसने तो ढूंढ ही रहा था, ले ली, पूरा पढ़ा लेकिन कुछ पता नहीं चला सीक्रेट क्या है लाइफ का। ऐसी मार्केट में हजारों बुक्स आती हैं। भगवद गीता नहीं पढ़ेंगे हम, सारी दुनिया की चीजें पढ़ेंगे, रोज अखबार पढ़ेंगे, लेकिन भगवद गीता जो हमारे जीवन का मैनुअल बुक है, मोबाइल के साथ एक पुस्तिका मिलती है, आप टेलीविजन खरीदते हो, रेफ्रिजरेटर खरीदते हो तो एक छोटी सी बुक मिलती है। वैसे ही शरीर मिला है, मशीन है, इस मशीन के लिए भगवान ने क्या दिया, भगवत गीता। ये भगवत गीता दी, हम उसको नहीं पढ़ेंगे, इसमें सारे रहस्यों का समाधान है। उस व्यक्ति ने बुक ली, पढ़ी पूरी, कुछ नहीं पता चला, उसमें से कागज का टुकड़ा था वो गिर गया नीचे। जैसे नीचे गिरा उसमें लिखा था क्या है कि यहां से दूर एक स्थान है, समंदर का किनारा है, उस समंदर के किनारे में कई सारे पत्थर हैं और एक पत्थर ऐसा है, पत्थर जनरली ठंडे होते हैं, एक पत्थर कैसा है, थोड़ा सा गर्म है, वो वास्तव में पारस पत्थर है और जिसको लेने मात्र से आप सबसे धनवान हो जाओगे। पारस पत्थर का मतलब है टच स्टोन, जो टच करोगे सोने को तो ये लोहे को सुवर्ण बन जाएगा। अभी इसने जितना भी उसके पास पीएफ था, प्रोविडेंट फंड, और जो घर किराया घर था सब बेच दिया, गाड़ी वगैरह सब, टिकट खरीदा, अफ्रीका के कोने में कहां गया, वहां समंदर का किनारा था गया से में बहुत सारे पत्थर हैं, अभी कैसे इस पत्थर को ढूंढे। उसकी बुद्धि चली, उसकी क्या किया उसने सोचा, जितने भी ठंडे पत्थर है ना हाथ में, ये तो बहुत सारे पत्थर है समंदर के किनारे, छोटे छोटे गोल गोल, एक एक पत्थर को जो ठंडे हैं उठा के फेंक दूंगा और फाइनली ये करते करते मुझे क्या मिलेगा, एक ऐसा पत्थर मिलेगा जो थोड़ा सा गर्म हो। हाँ, इसने शुरू किया, दिन रात कुछ खाना नहीं पीना नहीं, सुबह उठ जाता था, पत्थर को उठाता था फेंकता था, उठाता था फेंकता था, ऐसे फेंकते फेंकते उसके हाथ में भी वो ठंड का, हाँ, जितने आप ठंडे पत्थर फेंकोगे तो इतना मग्न हो गया कि सारे पत्थर एक जैसे लगने लगे। और ये फेंकते फेंकते उसने क्या किया, वो पत्थर गर्म पत्थर भी आया उसको भी फेंक दिया और जीवन भर और पत्थर उठाते रह गया और मर गया अंतिम वहां, लेकिन पत्थर उसके हाथ में आके चला भी गया। वैसे हमारी स्थिति है, भगवान कहते हैं आप मेरे शाश्वत अंश हो, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मन शष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये जो जीव है आत्मा मेरा शाश्वत अंश है, लेकिन बेचारा अपने जो पांच इंद्रियां हैं ज्ञान इंद्रिया और पांच कर्मेंद्रिया इनके उपभोग करने में, क्योंकि आंखों से अच्छा देखना चाहते हैं, जीवा से हम अच्छा टेस्ट करना चाहते हैं ना, त्वचा से हम टच करना चाहते हैं, इसलिए तो टच फोन आ गए, नहीं, और हम कानों से सुंदर म्यूजिक सुनना चाहते हैं, तो जो ये इंद्रियां हैं इनके द्वारा आनंद एंजॉय करना चाहते हैं। तो वैसे ही वो व्यक्ति, हाँ, इतने सारे, वैसे ही हम, हाँ, ये जो मनुष्य जीवन है उसी को भी गंवा देते हैं और फिर से हम भौतिक संसार के दुखों में गिर पड़ते हैं। इसलिए शास्त्र हमें सिखाते हैं। तो शास्त्र क्या है, शास्त्र ये नहीं कि किसने लिख दिए, कहते माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी मीन्स कल्पना। ये जब अंग्रेज आए ना भारत में, उन्होंने ये काल्पनिक साइंस हमें पढ़ाया। अंग्रेज जब आए, अंग्रेजों ने देखा अरे क्या ये लोग सुखी हैं, भारत तो सोने की चिड़िया थी, क्या थी, धूल निकलता था, कहते ना चिड़िया है भारत सोने की, सारे लोग खुश हैं, हाँ किसी और चीज की आवश्यकता नहीं, सब लोग संतुष्ट हैं और बड़े आपस में मैत्रीता प्रेम आदि का व्यवहार है, हाँ एक दूसरे की सहायता करने की भावना है। लेकिन अंग्रेजों ने देखा इनको कंट्रोल करना बड़ा कठिन है, तो उन्होंने चीज देखी कि इनका रहस्य क्या है, दो चीजें हैं, एक तो ये जो शास्त्र है ना भगवद गीता भागवत संस्कृत जो शास्त्र है इसको ये लोग, क्योंकि पहले जमाने में लोग दिन में कार्य करते थे और संध्या का समय सूर्यास्त हो जाता था, सब लोग अपने घर में आ जाते थे, थोड़ा सा भोजन कर लिया तो पूरे परिवार गांव के लोग इकट्ठा होते थे, संध्या के समय महाभारत सुनते थे, भगवद गीता से सुनते थे, रामायण से सुनते थे, भागवतम से सुनते थे और आनंद अनुभव करते थे अपने जीवन में। इसलिए तो महाभारत कहता है कि कौन सा व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति सुखी कब रह सकता है, यदि उसका दिनचर्या इस प्रकार से हो तभी वो सुखी हो सकता है। कैसी, महाभारत कहता है गृहस्थ व्यक्ति सुबह का समय भगवान का भजन करने के लिए इस्तेमाल करता है, सुबह जल्दी उठता है, भगवान का नाम जप करता है, भगवद गीता से पढ़ता है, तुलसी की सेवा करता है, जल डालता है, भगवान को प्रणाम करता है, घर में अच्छा सा भगवान का एक स्थान बनाता है, हाँ सुबह के समय अच्छा सा भक्ति करता है, और दिन का जो 8 घंटे है उसको धन अर्जन करना चाहिए, क्योंकि उसके पास परिवार है, उसका जिम्मेदारी है, उसको धन अर्जन करना चाहिए 8 घंटे, और जो संध्या का समय है अपने परिवार के साथ देना चाहिए, क्योंकि परिवार के साथ वो क्या करे, मिलके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी कोई जीता है ऐसा, सुबह उठता है तभी धन, दोपहर को धन, रात को धन, खत्म, कोई सुख नहीं है। कोई तो पिता तो घर में होते नहीं, संडे को ही माता जो बच्चे हैं, पिता का पूरा चेहरा कब दिखाई देता है, संडे, नहीं तो दिन भर फोटो में देखते रहते हैं, ये मेरे पिता है, पिता दुबई में जाकर नौकरी कर रहा है, 1 साल के बाद दर्शन होता है, हाँ तो कैसे जीवन है। तो इसलिए शास्त्र हाँ हमें ये चीज की शिक्षा देते हैं। इसलिए जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, संसार विष वृक्ष, कि ये संसार विष का वृक्ष है। हाँ, लेकिन इसमें दो बहुत अच्छे फल हैं। बुद्धिमान व्यक्ति फलों को चखता है, क्या करता है, फलों को खाता है, चखता है। द्वि फले ही अमृतोपमे, दो फल अमृत के समान है, नेक्टर है। क्या है वो दो फल? शास्त्र कहते कदाचित केशवे भक्ति केशव। केशव कौन है? कृष्ण है। कौन है? जोर से बोले कृष्ण। और जोर से
कृष्ण।
और जोर से
कृष्ण।
हाँ, तो केशव मीन्स जिनके केश बहुत सुंदर है। जितने भी लोग अभी स्टाइल मारे ना अपने बालों का, वो किसको इमिटेट कर रहे हैं? कृष्ण को। केशव, हमारे केश तो वैसे ही नहीं है। हाँ, केश तो लोग वीक लगा रहे हैं, सफेद हो जाएंगे तो उसको डाई करते हैं। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान के केश तो घुंघराले हैं, सुंदर है, मुलायम है, आकर्षक है। इसलिए माता यशोदा कहती है कृष्ण, इसलिए कृष्ण का नाम केशव है। केशव नाम इसलिए भी है कि उन्होंने केशी राक्षस का वध किया था, केशी घाट वृंदावन में। तो ऐसे कदाचित केशवे भक्ति, एक फल क्या है? केशव या भगवान कृष्ण में अपना भक्ति होना एक फल है। और दूसरा क्या है? तद भक्ता समागमः। ऐसे जो केशव के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, उनका संग प्राप्त होना, भगवान के भक्तों का संग प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। साधुओं की संगति, संगति का मतलब क्या है? यानी कि उनके साथ खाना पीना उठना बैठना नहीं, उनसे कृष्ण कथा को सुनना, ये क्या है? साधु संग है। इसलिए शास्त्र कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। कि भगवान के भक्तों का संग करेंगे तो हम जीवन की जो पूर्णता है उसको प्राप्त करेंगे। जीवन की पूर्णता क्या है? अंते नारायण स्मृति है, अंत काल में भगवान का स्मरण हो जाना। तो कैसे भगवान का स्मरण हो सकता है अंत समय में? हाँ, कैसे हो सकता है बताइए? क्या करने से भगवान का स्मरण हमें हो सकता है? हाथ ऊपर करके बोलिए, कौन बोलेगा? एक एक व्यक्ति बोलिए कोई। हाँ माता जी, भगवान का नाम स्मरण करना। और क्या करने से भगवान का स्मरण होगा? भगवान की कथा को श्रवण करना, भगवान की सेवा करना, गीता को रोज पढ़ना, है ना, ये सब करने से भगवान का स्मरण होगा। तो भक्तों के संग में आकर हमें सीखते हैं। और भगवान गीता में कहते हैं अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे हे पार्थ, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, अनन्य चेता सतता, जो व्यक्ति अनन्य भावना से सतत मेरे नामों का स्मरण करता है, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः, हाँ हमेशा जो स्मरण करता, तस्याहं सुलभ का भगवान ने तस्याहं दुर्लभ पार्थ, भगवान उस व्यक्ति के लिए सुलभ हो जाते हैं जो भगवान का स्मरण करता है। तो भगवान का स्मरण करने का सबसे सरल उपाय कलयुग में क्या है? उनके नामों का जप करना। कोई कहेगा कि मैं ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं, नहीं हो सकता। आपको भगवान का स्मरण मुश्किल है, क्योंकि जब कलयुग की शुरुआत हुई तो नारद ने देखा कि ये लोग तो पागल की भांति खराब हो रहे हैं। हाँ, जैसे आजकल माता पिता कहते ना हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं। मैं 40 स्कूल में गया था पिछले साल दिसंबर में, सारे प्रिंसिपल्स को मिल रहा था। सारे प्रिंसिपल मुझे कह रहे थे कि सातवीं क्लास से ऊपर के जो बच्चे हैं सारे बिगड़ गए हैं, उनको कंट्रोल करना असंभव है, क्योंकि आजकल इंटरनेट मोबाइल ना ये गैजेट टैब सारी दुनिया आ गई, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो फिर उपाय क्या है? जब नारद ने देखा कि कलियुगा के लोगों के लक्षण क्या है, प्रायणा अल्पायुषा सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रता, कि कलियुग के जीवों की आयु इतनी कम है, बेचारे 100 साल जना था 60 साल में मरने लगते हैं, 30 साल में बुढ़ापा आ जाता है व्यक्ति को, नहीं
40 साल का हो जाता है तो बुढ़ापा उसको आ जाता है, ये बीमारी वो बीमारी, चलने में दिक्कत, बैठने में कमर दर्द हो रही है, कितनी प्रॉब्लम है। प्रायण अल्पायुष सभ्य कलावस्मित युगे जना मंद मंद बुद्धि के हैं। अभी हमें कुछ करना है तो कैलकुलेटर चाहिए, मोबाइल चाहिए। पहले लोगों को फोन नंबर ऐसे याद हो जाते थे, अभी कहा है मोबाइल, डिक्शनरीज, डायरीज। हाँ, लोगों की बुद्धि बिल्कुल गिर गई है, मंद भाग्य के हैं, क्यों फॉर्चुनेट नहीं है। और ही उपद्रता, मतलब छोटी छोटी चीजों से लड़ाई झगड़े करते हैं, क्या करते हैं लड़ाई झगड़े। अभी पुणे में एक घटना घटी थी रिसेंटली, एक न्यूज, तो उसमें था कि एक घर में एक बेटी थी जो कॉलेज में पढ़ना शुरू कर रही थी, उसके माता पिता ने कहा तुम मोबाइल यूज नहीं करोगे और फेसबुक यूज नहीं करोगे। उस बेटी को ऐसे और क्या बोल दिया मेरे माता पिता ने, वो दूसरे दिन सुबह गई अपने रूम में, फैन को रस्सी टांगी और आत्महत्या क्या कर दिया। छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाते कलयुग की जीवात्माएं, लड़ाई झगड़े चले हुए हैं। तो नारद ने कहा ये लोग क्या भगवान के धाम जाएंगे, इनमें क्या योग्यता है। तो उन्होंने ब्रह्मा से पूछा क्या करना चाहिए आपने तो सृष्टि की। ब्रह्मा ने कहा एक चीज है, क्या है, इति षोडशकम् नाम्नाम् कलिकल्मष नाशनम्। उन्होंने कहा 16 अक्षरों का जो भगवान का नाम है वो कलियुग के सारे कल्मषों का विनाश करने में प्रभावशाली है। नारद ने पूछा कौन सा है वो 16 अक्षरों का नाम। उन्होंने कहा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर आगे कहते ना तो परतर उपाय सर्व वेदेशु दृश्यते। उन्होंने कहा ना तो परतर उपाय, और उपाय नहीं है, सर्व वेदेशु सारे वेद इस चीज को रिकमेंड करते हैं। तो ये हरे कृष्ण मंत्र तो ये हरे कृष्ण वालों का नहीं है, है कि नहीं। कोई कहता है अरे हरे कृष्ण वाले हैं तो हरे कृष्ण मंत्र, नहीं ये हमारा मंत्र नहीं है, ये किसका है, कृष्ण का है। क्योंकि भगवान ने शास्त्रों में बोला है और उसी का हम पालन कर रहे हैं। तो अलग अलग युगों में अलग अलग भगवान का नाम था। हाँ, तो कलयुग के लिए भगवान का हरि नाम है महामंत्र। तो आप सबसे यही निवेदन है कि भगवान की इस अमूल्य शिक्षा को स्वीकार कीजिए और भगवान के नामों का उच्चारण करके देखिए कि आप आनंदित हो जाएंगे। जो श्रील प्रभुपाद हैं फाउंडर इस्कॉन के संस्थापक, उन्होंने 1965 में अमेरिका गए कलकत्ता से, जब उनकी आयु 70 साल की थी। कितने 70 साल की आयु, उनके पास 40 रुपए थे, ऐसे केवल 40 रुपए को लेकर, और भागवतम था उनके पास एक ग्रंथ, और बस 40 रुपए और 70 साल की आयु में। कौन बूढ़ा व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलेगा 40 रुपए में। वो अमेरिका गए और उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, एक धन है। भगवान को कहा कि हे कृष्णा मेरे पास एक धन क्या है, आपका ये जो नाम है ना हरे कृष्णा, ये बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है, इसमें मेरी पूर्ण श्रद्धा है। ये जब अमेरिका पहुंचे जलदूत से गए थे बोट से, एक महीने के बाद अमेरिका पहुंचे न्यूयॉर्क, और वहां जाकर ना उनके पास वहां रहने के लिए, ना खाने के लिए, कोई रिसीव करने के लिए कोई नहीं था उनको। उनको ये भी पता नहीं था लेफ्ट जाना या राइट जाना, और अकेले बूढ़े, कोई उनको पीछे कोई नहीं था, सन्यासी। लेकिन एक ही उपाय कि नहीं, सारा जगत दुखी है, सबको सुख एक एक चीज से मिल सकता है, भगवान का नाम। और वास्तव में सारे लोग घूम फिर के उधर ही आ जाते हैं, है कि नहीं। जैसे जैसे बुढ़ापा नजदीक आता है व्यक्ति कहते अरे बहुत हो गया अभी ना, थोड़ा सा जाते हैं, कहां जाते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, सेवा करते हैं। तो प्रभुपाद जब अमेरिका गए, क्योंकि इनके गुरु महाराज ने इनको आज्ञा दी थी जब वो कॉलेज में थे, सुभाष चंद्र बोस और एक ही कॉलेज में पढ़ते थे कोलकाता में, तब उनके गुरु ने कहा तुम इंग्लिश इतना अच्छा जानते हो तो क्यों नहीं ये भारतीय संस्कृति गीता का प्रचार विदेशों में क्यों नहीं करते हो। तब वो अमेरिका गए, वहां वो एक गार्डन था, एक पार्क, जैसे आप इंडिया गेट जाते हो ना, पेड़ पर बहुत सारे गार्डन है, तो वैसे एक गार्डन था वहां, टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क। उस पार्क में एक पेड़ के नीचे बैठे, उनके पास एक करताल था, क्या था, ये था बस, अकेले उस पार्क पेड़ के नीचे बैठे और वहां कीर्तन करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम।
तो कई सारे लोग जुड़ने लगे, यूथ यंग लड़के, और उन्होंने मुझसे सीखा भगवद गीता, भगवान के संदेश को सीखा, भगवान के नाम को सीखा, और उन्होंने 11 साल में पूरे विश्व में 108 मंदिर बनाए हर देश में। अभी तो इस्कॉन के 700 से अधिक मंदिर है पूरे विश्व में। अब अफ्रीका भी जाओगे ना, काले लोग, गोरे लोग, सब लोग तिलक लगा रहे हैं और सब लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, सब लोग गीता का अध्ययन कर रहे हैं। घर में जाओगे तो सब जगह भगवान की तस्वीरें हैं, सब बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब भगवान का भक्ति कर रहे हैं। अफ्रीका के गाँव में जाओ या लंदन के शहरों में जाओ या रशिया में जाओ, जहां मर्जी जाओ, भारत में नहीं पूरे विश्व में, तो भगवान का ये संदेश मैंने पहुंचाया है। उन्होंने अपने आप को सामने नहीं रखा, किसको सामने रखा? कृष्ण। तो ये असली साधु का मतलब है। सारी जनता जनार्दन अपने फोटो लगा के घूमती रहती है, उनको पूछो भगवान को नहीं, हमें तो भगवान है, हमारी पूजा करो ना, भगवान को ही नहीं है, ये सिचुएशन है। तो आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, ये दो फलों को अपने जीवन में लाओ। क्या है दो फल? भगवान के प्रति भक्ति और भगवान के भक्तों का संग। तो ये कैसे होगा? ये दोनों फल यहां मिल रहा है आपको, आपके घर के पास। आपको मार्केट में जाने की आवश्यकता, आपके घर के नजदीकी मार्केट खुला है अभी, और लेकिन हर संडे ओपन होता है। हाँ, उधर अभी तो इधर आ गया है, पिछले दूसरे स्थान में हो रहा था। तो ये मार्केट यहाँ ही है, आपको बस अपने घर से बाहर निकलना है और निकलकर यहाँ आना है और केवल अपने कानों को लगाना है भगवान के बारे में सुनने में, और जीवा को लगाना है
हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो आप सबका धन्यवाद गंभीरता से श्रवण करने के लिए। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या कमेंट या समीक्षा है, नहीं तो मैं प्रश्न पूछूंगा। हमारे पास दूसरा माइक है, तो प्रश्न जो आपने सुना है उससे संबंधित होना चाहिए।
जानकारी हमें चाहिए, अभी पिछले हफ्ते माला दिया गया था, उसमें जो उसके दाने हैं वो उनकी संख्या कुछ ज्यादा कुछ कम है, किसी में 16 है, किसी में कुछ निश्चित संख्या हुई होती है।
108 होने चाहिए मन के, कितने? एक माला में 108 मन के होने चाहिए। अच्छा, तो वो फिर गलती से हुआ होगा किसी माला में बनाते समय, लेकिन 108 मन के होने चाहिए। तो आप सबको, आप जो आ रहे थे 6 दिनों से, जिनके पास माला मिली है पिछले बार, जिन्होंने कहा था जप करेंगे, कितने लोग जप कर रहे हैं बताइए, हाथ ऊपर कीजिए। एक एक हाथ ऊपर कीजिए,
दो नहीं,
ऐसे कीजिए, एक हाथ। ओ अच्छा है। बाकी लोग जो जप नहीं कर रहे हैं या जिनके पास माला नहीं है वो हाथ ऊपर कीजिए, कितने लोग हैं? और जो लोग पहली बार आए हैं वो हाथ ऊपर कीजिए प्लीज। हाँ, पहली बार काफी लोग हैं। तो आप सबको हम माला जप करना सिखाते हैं, बहुत सरल उपाय है भगवान का स्मरण करने का।
माला करेंगे ना, एक राउंड
माला नहीं है शायद, तो फिर भी बहुत सरल साधन है भगवान का नाम जप करने के लिए। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है इससे संबंधित, या मैं प्रश्न पूछूं? तो जी माला लाए क्या आप?
नहीं।
हाँ ठीक है, ठीक है। तो जिनके पास माला है आप माला लेके आए, अगली बार माला यहाँ प्राप्त होगी आपको, और माला में आपको जप करना है। किसी की माला है दिखाई, मैं जरा बताता हूँ। हरे कृष्णा। तो एक मिनट के लिए आप ध्यान दीजिए। हाँ, ये जप माला है, क्या कहते हैं उसको? जैसे आजकल व्यक्ति हमेशा क्या रखता है अपने साथ, मोबाइल रखता है कि नहीं रखता? बच्चा मां के गर्भ से बाहर आता है कि नहीं आता है, उसके लिए मोबाइल पहले से तैयार रखते हैं? नहीं, पहले से मोबाइल। तो उस मोबाइल में तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, रिचार्ज करना पड़ता है, चेंज करना होता है। लेकिन ये भगवान
के लिए प्राप्त करने का ये मोबाइल है, और मोबाइल नंबर क्या है?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
इसलिए हम सब लोग अपना मोबाइल लेके घूमते रहते हैं, नहीं जहां भी जाओ मोबाइल साथ होना चाहिए, लोग टॉयलेट में जाएंगे तो भी मोबाइल साथ रहता है, नहीं तो इस प्रकार से हमको जप करना है। ये माला है जिसमें 108 मनके हैं, कितने? क्योंकि भगवान के 108 भक्त हैं, महान गोपियां हैं, उपनिषद है वगैरह वगैरह। तो ये जो उंगली है इसका इस्तेमाल नहीं करना है, मतलब टच नहीं करना है। इसलिए जो बैग है, बैग होना आवश्यक है, क्योंकि उससे लटकेगी नहीं, और जब आप हाथ डालोगे तो आपकी उंगली बाहर, जिसका काम नहीं वो बाहर, गेट आउट। तो वैसे ही ये उंगली, क्योंकि इससे हम दोष, तुम ऐसे हो, ये हो, वो हो, नहीं, फिर नाक में भी डालते हैं, कान में भी डालते हैं, शास्त्र कहते हैं दूषित है, तो फिर इसको छोड़कर बाकी उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे लोग कई बार लोग आपको दिखाई नहीं देते हैं जो माला फेरते रहते हैं, माला को फेरना नहीं है, जैसे आप मतलब घुमाते रहते हैं, कहते माला घुमा, आप तो माला भी घुमा रहे हैं। अभी एक व्यक्ति हमारे प्रभु जी बता रहे थे कि माला, कई लोग एक व्यक्ति को पूछा माला घुमाते रहते, कहते हाँ घुमाता हूँ, कैसे घुमाते हो? कहते मेरे पास साइकिल है, उसके चक्के में बांध दिया है, मैं जो साइकिल ले जाता हूँ वो घूमती रहती है। तो वैसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं जब करना, मतलब ऐसे ऐसे नहीं करना, क्या करना, हर एक मनके को पकड़ना और उसके ऊपर बोलना, क्या बोलना,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे,
और सुनना, क्या करना, सुनना। हाँ, भगवान के नाम को सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे नहीं कि मन में, कोई कहते हम मन में कर रहे हैं, हम बोलते हैं मन में खाओ ना, क्यों पत्नी को बोलते हैं कि तीन टाइम का भोजन बनाओ, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, नहीं मन में खाता है क्या कोई? हाँ प्लेट में खाता है, नहीं कि नहीं, तो वैसे नाम, ये जैसे प्लेट में खाते हो तो वैसे नाम माला में लेना चाहिए, भगवान कहते हैं। तो हर एक मनके में पूरा महामंत्र बोलना है, फिर दूसरे में बोलना है पूरा, फिर तीसरे में बोलना है, फिर चौथे में बोलना है, ऐसे बोलते हुए है।
अब ऐसे ऐसे जब करते करते यहाँ पहुंचेंगे,
यहाँ पहुंचेंगे तो आखिरी जो मनका है उस पर जब करना है, जब हो जाएगा तो आपको इसके ऊपर से इसमें जंप नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, जो आखिरी है उसको पहला करना है, फिर उसको घुमाना है, मतलब उसको रिपीट करना है, वहां से पीछे जाना है, फिर से
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
ये बहुत आनंददायी है ना, भगवान का नाम लेना क्या है, आनंद है। अभी मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, ध्यान से आपको जोर से बोलना है ये नाम, हरे कृष्ण मंत्र, कैसे बोलना है, जोर से बोलना है, और जैसे आप जोर से बोलेंगे ना, जैसे बंद हो जाएंगे तो आपको, आपके पास जो भक्त बैठा है आपके पास है ना, पहले से देखिए कौन आपके पास बैठा है, एक बार देख लीजिए, आपको जैसे आप बोलेंगे उसके तुरंत बाद आपको एक दूसरे को देखना है, फिर बताना है क्या होता है। अभी बोले एक साथ,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अपने पास वाले को देखिए, जल्दी देखिए देखिए देखिए, अब हंसे कि नहीं, खुश हुए कि नहीं, आनंद आपको प्राप्त हुआ कि नहीं, कितना सरल है। हाँ तो यह है भगवान के नामों का अपना लाभ। तो आप सबसे निवेदन है इस प्रकार से आइए, कृष्ण कथा में भाग लीजिए, भगवान के नामों का जप कीजिए और भगवत गीता के संदेश को सुनिए। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हाँ बोलिए, जब बीमार है तो हम वैसे कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम हमेशा बीमारी का बहाना नहीं बनाए। प्रॉब्लम नहीं है, तब आप जब करते करते ये हो जाएगा कि आप शायद आप मुंह बंद भी हैं तो भी भगवान का नाम आपको स्मरण होगा। लेकिन अभी हमें बहाना नहीं बनाना है, क्योंकि हम सब लोग क्या है, बहाना बनाने में एक्सपर्ट है। हाँ थैंक यू हरे कृष्णा। तो हम अभी कीर्तन करेंगे थोड़ी देर, आप खड़े हो जाइए। तो आपको अभी आपको नाचना भी है, क्या करना है, आपके ठंड के कपड़े थोड़ा ढीले कर दीजिए, सब लोग हाथ ऊपर कीजिए ऐसे, और थोड़ा सा
बिल्कुल अपने आपको ऐसे
ये कर लीजिए, हिला दीजिए शरीर को, और आगे आगे आइए, मैं आपको एक डांस सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा, उस डांस का नाम है स्वामी स्टेप। क्या नाम है, याद है सबको, सब बोले स्वामी स्टेप। तो आपको सिखाते हैं अभी कैसे है स्वामी स्टेप। तो स्वामी स्टेप बड़ा सरल है, जब संसार में व्यक्ति एक ही बार नाचता है, या तो शादियों में नाचता है, कभी तो अपनी शादियों में नाचता है और उसके बाद नाचता ही रहता है। तो बाद में तो अभी आपको स्वामी स्टेप सिखाते हैं, हम कीर्तन करेंगे और आपको फिर अभी नाचना है साथ साथ और मुंह से बोलना है। तो कैसे नाचेंगे, एक दोनों हाथ ऊपर करने, पहले देख लीजिए
दोनों हाथ ऊपर करने हैं, फिर एक पाव इधर,
एक पाव फिर इधर, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, एक तरह से मिलिट्री। तो आपको अभी कीर्तन में नाचना है, भाग लेना है। हरे कृष्ण, तैयार रहेंगे, हरि बोल हरि बोल
हरि बोल
हरि बोल। तो सभी लोग तैयार हैं अपने, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बोला नहीं पहले, मतलब बैक बोलेगा, हरे कृष्णा। आप बहुत उत्साही हैं, एक्साइटेड ना, टू मच। तो पहले बोलेंगे ये गाएंगे, आपको ध्यान से सुनना है और उसी ट्यून में रिपीट करना है। आप अच्छा सुनेंगे तो अच्छा बोल पाएंगे, ये सीक्रेट है। अच्छा बोलना है तो क्या करना होगा, अच्छा सुनना पड़ेगा, अच्छा बोल सकते हो।
हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare Hare। Hey, डांसिंग, डांस करना, इसके बाद फीस्टिंग, प्रसाद खाना, नाश्ता खाना और खाना।